भी साथ साथ थे। लक्ष्मण जी का खूब सब ठीक ढंग से घाव वगैरह भर दिया गया। इस प्रकार से इधर तो राम जी की सेना के अंदर बड़ा उत्सव हो रहा है और उधर कई गुप्तचर थे, वो गुप्तचर दौड़े दौड़े रावण के पास में गए। गुप्तचर थे, सेवक भी थे, वे सब राम जी के पास में गए, नहीं रावण के पास में गए। रावण के पास में जाकर उनसे कहने लगे कि महाराज युद्धे हतो महाराज लक्ष्मणेन तवात्मज, इस युद्ध के अंदर आपका लड़का मेघनाद लक्ष्मण के द्वारा मारा गया और विभीषण की पूरी सहायता रही उसके मरने में। विभीषण जी यदि सहायता नहीं करते तो आपका लड़का नहीं मरता। महाराज बड़ा शूरवीर आपका लड़का, युद्धों में कभी हारने वाला नहीं और वो युद्ध के अंदर हार गया, बड़ा शूरवीर था वो। और लक्ष्मण के बाणों से संतप्त होकर के वो यमराज जी के लोक में चला गया। अपने बेटे की मृत्यु अपने ही कानों से सुनकर के कौन पिता भाई क्या उस पर बीतती है तो वही जाने जो ऐसा सुने है रावण जैसे। रावण के मन में बहुत दुख हुआ, रावण बड़ा विलाप करने लगा। कश्मलम प्राविशन महत, और के मरने पर तो थोड़ा कश्मल हुआ, दुख हुआ, और इसमें महत कश्मलम, उसमें महान कश्मल हुआ, बड़ा उसको दुख हुआ। और दुखित होकर के विलाप करते हुए कहने लगा कि हे राक्षस सेना के महानायक इंद्रजीत, तुमको लक्ष्मण ने किस प्रकार से जीत लिया, लक्ष्मण के बाणों से तुम कैसे मर गए, विश्वास नहीं होता है। तुम तो अपने बाणों से यमराज जी को भी धूल चटाने वाले थे, तुमने इंद्र को भी बांध करके लंका में डाल दिया था, तुम मंदराचल पर्वत के शिखर भाग को भी अपने बाणों से तोड़ सकते थे, फिर तुमने लक्ष्मण को क्यों नहीं युद्ध में मार दिया। आहो आज यमराज जी तुमको मरा हुआ देखकर कितने आनंदित होते होंगे कि सारे संसार को मैं मारता हूं और ये मेघनाद मुझे मारता था, ये मेघनाद आज मर गया, उनके लिए तुम बड़े खुशी के कारण बन गए। एक बात तो है मेघनाद, तुम मर गए, युद्ध भूमि में मरे हो, युद्ध में मरने वाला व्यक्ति सदा स्वर्ग में जाता है, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और युद्ध भूमि में मरने वाला अनंत अनंत पुण्यों को लेकर के यहां से जाता है। कारण कि युद्ध भूमि में मरने वाला व्यक्ति अपने लिए नहीं मरता, वो समस्त लोगों के लिए अपने स्वामी के लिए मरता है। आज देवताओं के यहां बड़ी खुशी हो रही होगी क्योंकि उनको पीड़ित करने वाला तू ही था, वे निर्भय होकर के आज विचरण करेंगे। वे देवता लोग अब बड़े स्वच्छंद होकर मेरी लंका में आएंगे, त्रिलोकी में घूमेंगे। ओहो हे मेघनाथ, तेरे बिना मुझे लंका सूनी मालूम देती है, तेरे बिना मुझे सब परिवार निस्नेही मालूम देता है। जिस समय में तुम यहां मेरे पास आते थे मेरे मन का उत्साह बढ़ जाता था, आज हमारे सारे के सारे राक्षस अपने अपने घरों में अपने अपने स्थानों में तुम्हारे लिए कितना विलाप करते होंगे। ओहो मेरे मन में हार्दिक इच्छा थी कि मैं तुमको युवराज पद पर बैठाऊं, मेरे मरने के बाद तुम मुझे अपने कंधे पर ले जाकर श्मशान में जलाओ और तुम यहां लंका के राजा कहलाओ, परंतु यहां तो उल्टी बात हो गई मेघनाद, तुम मरे हो और तुम्हारे पीछे मैं जिंदा हूं। असल में तो उल्टी बात हो गई, मेरे मरने के बाद तुमको प्रेतकारी करना था, तुम्हारे मरने के बाद आज मुझे प्रेतकारी करना पड़ेगा। मेघनाथ, मेरे छाती के अंदर दो शूल थे, कम से कम मरने से पहले दो को तो निकाल देते, एक राम और एक लक्ष्मण। उसमें से लक्ष्मण को यदि तुम मार देते तो भी कोई बात नहीं थी, राम को फिर मैं अपने आप देख लेता, लेकिन तेरे मरने से मैं टूट गया हूं। इस प्रकार से रावण बहुत विलाप करने लगा, बड़ा क्रोध आया। एक तो वैसे ही प्रकृति से क्रोधी, और अब बेटा मर गया तो और ज्यादा क्रोध आया। और उसने अब उसके अपने ललाट थे, ललाट वो ललाट उसके ऊपर ये भौंहें थी, भौंहें तान ली। देखो कितनी बढ़िया उपमा देते हो, ये भौंहें कैसे टेढ़ी हुई, जैसे सागर के अंदर जोर से वायु चलती तो पानी टेढ़ा होता है, प्रलय काल में जब जोर से हवा चलती है तो यूं टेढ़ी हो जाता है, पानी की लहरें यूं टेढ़ी हो जाती है समुद्र में, ऐसे ये भौंहें थी, भौंहें टेढ़ी हो गई। और क्रोध कोप करने से जब वो यो उबासी लेता था तो उबासी से उसके मुंह से आग यूं निकलती थी, धुएं सहित आग, इतना उसमें क्रोध आया था। उस समय उसने मन में विचार किया कि क्या करूं, अब तलवार ली किसको मारूं, सोच करके विचार करके, ओहो बहुत अच्छा, जिस प्रकार से मेरे एक एक वंश वालों को राम ने, लक्ष्मण ने, सुग्रीव ने रणभूमि में मारा है और मेरे हृदय में शूल पैदा किया है, तो कम से कम एक बाण राम के और लक्ष्मण के भी मार दूं, शूल का काम करूं कि मैं जाकर सीता को मार दूं, ताकि राम और लक्ष्मण रोते रोते हमसे लड़ाई करें। जब उनको सीता की प्राप्ति की आशा नहीं रहेगी तो वो अपने आप अपने बाणों से मर जाएंगे, मेरे बाणों से मर जाएंगे। तलवार ले ली, तलवार लेकर के और क्रोध के अंदर बैठा बैठा सोचता है, कहां जाऊं, कैसे जाऊं, किनको साथ में लूं। ऐसे वो क्रोध के मारे आंख फाड़ता है तो उसे क्रोध से आंख से आंसू निकलते हैं, आंखों के अंदर बड़ा तेज आया है, दांतों को वो कटकटाता है और सिर को धुनाता है। इस प्रकार से वह बड़ा क्रुद्ध हुआ, दसों दिशाओं को देखता है, दसों दिशाओं को देख करके और वो राक्षसों के पास, राक्षसों को भी देखता है, उन राक्षसों को देखता है तो भाई उस समय राक्षस लोग भी कांपने लगते हैं, राक्षस लोग उसके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और वो यमराज के समान उनको घूर घूर के देखता है। राक्षस देखते हैं कि ये क्रोध कहीं हमको मारने में, तलवार तो हाथ में है ही, कहीं हमको मारने में अपना क्रोध न उतारे, राक्षस केवल हाथ जोड़े नीचे खड़े हैं। रावण ने उन राक्षसों के बीच में कहा, राक्षसों मैंने हजारों वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा को संतुष्ट किया था, ब्रह्मा के सामने ऐसी तपस्या और कोई नहीं कर सका था, मेरी उन तपस्याओं से ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर के मुझे कहा था वरदान मांगो, मैंने वरदान में ये मांगा कि मैं देवताओं से न मरूं, असुरों से न मरूं, ब्रह्मा जी ने मेरे मांगने के अनुसार तथास्तु कह दिया। मुझे ये पता होता कि बानरों से और मनुष्यों से मेरी दुर्गति होगी तो मैं कभी ऐसा नहीं करता, मैं मनुष्यों के लिए भी मांग सकता था, परंतु मैंने मनुष्यों के लिए अभय नहीं मांगा। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर मुझे कवच दिया कि लाओ वो कवच, लो ये कवच ले। वो कवच सूर्य के समान प्रकाशमान, सोने का वो कवच, वो किसी भी शस्त्र के द्वारा भेदा न जा सके, देवताओं से असुरों से किसी से भी युद्ध के अंदर और न मुक्कों से इसको तोड़ा जा सके, ऐसा मजबूत कवच मुझे ब्रह्मा जी ने दिया था। ब्रह्मा जी ने मुझे एक बड़ा अच्छा रथ दिया कि ये रथ तुम रखो, रथ भी मुझे दिया और मुझे बाण भी दिया, मुझे धनुष दिया, ये सब कुछ दिया, लेकिन मैंने सोचा कि मनुष्य मेरा क्या करेंगे, बंदरों के तो मेरी कल्पना ही नहीं थी, ये इतना मेरे वहां पर चूक रह गई थी, इतना मुझे पहले मालूम होता तो मैं साथ में ये भी वरदान मांग लेता, पर क्या करूंगा, आज मैं इसी कवच को पहनता हूं, इसी रथ के ऊपर बैठता हूं, अपने बाण लेकर के, अपने तुणीर को लेकर, ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति को लेकर अब मैं राम के सामने जाता हूं। इतना कहकर के पहले मैं अशोक वाटिका की तरफ जाऊंगा। तलवार हाथ में थी, सीताम हंतुम व्यवस्यत, सोचा कि राम के पास जाने से पहले सीता को मारूं। लाल आंखें, और बेचारे वो दीन हीन गरीब राक्षस लोग उन राक्षसों को सुनाता हुआ बोला, मेरे पुत्र मेघनाद ने माया की सीता बना करके राम को मोहित किया था, लक्ष्मण को मोहित किया था, बांदरों को मोहित किया था। मायामयी सीता का नाटक मैं नहीं करूंगा, मैं साक्षात सीता के पास जाकर सीता का सिर उतारूंगा और कटा हुआ उसका सिर, खून से लथपथ उसका सिर राम के, मैं अपने बाण के अंदर उसको लगाकर और फिर राम के पास सीधा भेजूंगा। ले राम, ये सीता का सिर ले मेरे बाण के द्वारा, और फिर मेरे से वो युद्ध करेगा तो कैसे युद्ध करेगा देखता हूं। किंचित एवं हतम तत्र सीतयेयम् इति दर्शितम्, माया मम वत्सेन वंचनार्थम मनोकसाम, मैं साक्षात सीता को मारूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर के वो बड़ी तेजी के साथ अशोक वाटिका की ओर रवाना हुआ। उसके साथ में उसकी स्त्रियां भी थी, उसके साथ में उसके मंत्री भी थे, कोई कुछ नहीं बोला। अब क्रोधी आदमी को क्या बोले, यदि उसको ज्यादा सब कुछ कहने लगे, वो क्रोध में आया हुआ, हाथ में शस्त्र है, जाने वो किस समय क्या किस किसी पर शस्त्र चला दे तो पता नहीं, वो राजा और रह गया। राजा हो, शस्त्र हाथ में हो, क्रोध अवस्था में हो, उस समय भाई कौन क्या कहे, जो है कोई उसको रोके नहीं, और सीधा ही वो अशोक वाटिका की तरफ गया और राक्षसों को देख करके जोर जोर से नाद करता है, तुम लोगों ने लंका के अंदर इतने वर्षों से खाया है और तुम लोगों ने यहां जीवन लगाया है, और आज तुम राम के सामने मरने के लिए क्यों नहीं जाते हो, ऐसे धमकाता हुआ निकलता जा रहा था। अर्थात वो क्रोध में बड़ा पागल हो गया। राक्षस लोग उसके सामने डरे 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 आपस में बात करते थे, आज महाराज रावण इतने क्रुद्ध हुए हुए हैं, आज ये राम और लक्ष्मण को मार देंगे, चारों लोकपाल भी इकट्ठे हो जाए तो ये किसी को छोड़ने वाले नहीं है। और बहव शत्रुवश चान्य, इनके इस संसार में बहुत शत्रु इन्होंने पैदा किए हैं, तीन तीनों लोकों में भुंगते आदित्य रावण है, लेकिन सब शत्रुओं को इन्होंने परास्त किया है, इनका क्रोध कभी भी व्यर्थ नहीं गया है, बड़े बड़े रत्न इन्होंने संसार में से इकट्ठे करके लंका में रखे हैं, उन्होंने क्रोध के भरोसे सब काम किया, क्रोध में बल में पराक्रम में इनके समान कोई नहीं है, ऐसे राक्षस लोग आपस में बातें करने लगे। और वो सीधा तलवार लिए हुए अशोक वाटिका में गया, क्रोध से बड़ा मूर्छित था, कहां है वो जनक नंदिनी, कहां है वो दशरथ स्नुषा, दशरथ की पुत्रवधू, कहां है वो राम की भारिया, कहां है वो मेरी होने वाली स्त्री, ऐसे जोर जोर से वो बोलने लगा। और अपने हाथ में तलवार लिया हुआ उस समय में बड़ी तेजी से जाने लगा। उस समय उनके हितेशी सेनापतियों ने, मंत्रियों ने थोड़ा सामने जाकर रास्ता रोका, महाराज आप लंका के राजा हो, इतने प्राणियों को आप जीवन देने वाले हो, ये शस्त्र आपको सीता पर नहीं उठाना चाहिए, सीता की आपको रक्षा करनी चाहिए, सीता अबला है, सीता को आप क्यों शस्त्र से मारना चाहते हो, शस्त्र तो शस्त्र के खाने के लिए तो इतनी असंख्य सेना आपकी बाहर पड़ी है, सीता और शस्त्र इन दोनों का कोई मेल नहीं है। पर राक्षस कहां मानने वाला, हटो तुम लोग, मुझे रोकने की और उपदेश देने की जरूरत नहीं है, आज मुझे कुछ काम करने की जरूरत है, मेरा बेटा मारा गया और तुम लोग मुझे सीता को मारने से रोकते हो, आज तुम मेरे सामने आए, तुम क्यों नहीं राम के सामने गए, क्यों नहीं तुम लक्ष्मण के सामने गए, क्यों नहीं तुम विभीषण के सामने गए,
विभीषण शत्रु के साथ मिलकर हमें मारने की सोचता है वो सही है, और हम सीता को मारते हैं तो ये पाप हो, ये पाप और पुण्य की क्या परिभाषा है? अब कौन करे, कौन अब उसको समझाए? उस समय में राक्षस को बड़ा क्रोध आ रहा था। उस समय में भाई सीता ने देखा कि भाई क्या करें। सीता बड़ी मन में चिंतित हो गई, डर गई, ओहो ये रावण मुझे मारने आ रहा है। मैंने सुना है कि मेरे राम लंका में आए हुए हैं, मेरे नाथ है वो, तो मैं उन नाथ के रहते हुए आज अनाथ के भांति मारी जाऊंगी, मैं ऐसे मारने योग्य नहीं हूं। इसने मुझे बार बार राम से मन हटाकर अपने में मन लगाने के लिए कहा, और मैंने हर बार इसका खंडन किया, क्योंकि ये बात उचित भी है। मैं एक राम की भारिया होकर इस दुष्ट की रावण की कैसे स्त्री हो सकती थी? मेरे व्यवहार से निराश होकर आज ये क्रोध के अंदर डूबा हुआ मुझे मारना चाहता है। ओहो राम और लक्ष्मण दोनों लंका में हैं और मैं भी लंका में हूं, लेकिन आज मुझे राम जी का प्यार भरा स्नेह भरा वो हाथ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन रावण की एक क्रोध भरी तलवार मुझे दिखाई दे रही है। क्या बात है, आज राक्षस लोग खूब राजी होकर नाच रहे हैं, क्या बात है, कहीं राम और लक्ष्मण में कोई मर तो नहीं गए हैं? यदि राम और लक्ष्मण के मरने पर ये इतना राक्षसों का नाद हो रहा है तो निश्चित ही मुझे मारे तो बड़ा अच्छा काम है, ताकि मैं इनकी मृत्यु न देख सकूं न मैं सुन सकूं। अरे हनुमान ने मुझे कहा था कि चलो माते तुम हमारे साथ चलो, हे माता मैं तुमको अभी प्रश्रवण पर्वत पर ले चलूं, लेकिन मैंने उसकी बात का आदर नहीं किया और आज देखो मुझे क्या क्या देखना पड़ता है। ओहो उस वक्त यदि मैं हनुमान के साथ प्रश्रवण पर्वत पर चली जाती तो राम जी को इधर कभी नहीं भेजती, बानरों को यहां भेजती, और मैं राम जी के साथ वहीं रहती, जंगलों में अब 14 वर्ष की अवधि पूरी करके अयोध्या चली जाती, राम जी को साथ में लेकर जाती। क्या करूं, मैं अपने पति के पास रहने वाली लंका में रह रही हूं, मैं लंका में रहने योग्य नहीं हूं, मैं अपने पति के पास रहने में मेरी शोभा देखती हूं, यदि मेरे पति मर गए होंगे तो कौशल्या को कितना कष्ट हुआ होगा, कौशल्या के तो एक ही बेटा और वही मर गया, और ये भी सब मेरे कारण से हो रहा है। कौशल्या राम के जन्म की बात याद करेगी, बाल्य लीलाओं को याद करेगी, राम जी के जवानी को याद करेगी, मेरे विवाह को याद करेगी, और जब वो वनवास में रवाना हुए उस दृश्य को याद करेगी, याद कर करके कौशल्या रोती रहेगी, और वो अपने जीवन भर अपने पुत्र को न देख करके संभवतः अग्नि में गिर जाएगी या किसी और उपाय से वो अपने शरीर का नाश कर लेगी। हे केकई तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया, परंतु मंत्रे तुझे क्या मिला, हम सबको कष्ट देने में मंत्रे तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। इस प्रकार से सीता विलाप कर रही है, जिस प्रकार से चंद्रमा के बिना रोहिणी विलाप करती हो इस प्रकार से सीता रावण को देख देख करके विलाप करती है। उस समय में रावण का एक बहुत मुंह लगा सुपार्श्व नाम का मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, वो रावण को पहले भी समझाता था कि देखो तुम सीता को राम के लिए सुपुर्द कर दो, लेकिन रावण मानता नहीं था, लेकिन रावण का प्रिय था। सुपार्श्व ने रावण के पास आकर कहा, हे महाराज ये क्या कर रहे हो, सीता को मारने के बाद यदि आपने राम और लक्ष्मण को अभी युद्ध में मारने वाले तो हो ही, उनके मारने के बाद आपको कितना पश्चाताप होगा कि अरे राम और लक्ष्मण तो मर गए, सीता को मैंने यूं ही मार दिया, ये सीता को कैसे प्राप्त करूं? तो उस समय आप रोओगे, उस समय आपको कष्ट होगा। देखो महाराज आप ऐसा करो, इसी क्रोध को लेकर और इसी तलवार को लेकर या और शस्त्र को लेकर राम को मार आओ, लक्ष्मण को मार आओ, और फिर सीता तो अपने आप आपके महल में आ जाएगी, आपकी हो जाएगी और आपकी भारिया हो जाएगी। तलवार से मारने के बाद फिर आप उनको भी मार दोगे, ये भी मर जाएगी, सीता तो आपको नहीं मिली। जिस कारण से इतना बड़ा आपने युद्ध किया है, वो सारा का सारा परिश्रम आपका व्यर्थ चला जाएगा। मारो सीता को, कब? जब राम भी न रहे, राम जब राम आपको मारे, तब आप तो खुद राम को मारने वाले हो। तो राम के मरने के बाद में सीता जाएगी कहां? वो तो आपकी ही तो रहेगी, ऐसा मत करो। देखो आप कितनी रूप संपन्ना सीता है, कितना इसका सौंदर्य है, कैसी श्रेष्ठ है, सब रानियों में श्रेष्ठ रानी होने लायक है। ऐसी गुणवती स्त्री को आप मारोगे तो उम्र भर पश्चाताप करोगे। रावण ने कहा हाँ हाँ, ये बात तो तुमने अच्छी कही हमको, बड़ा राजी हुआ और उसको बड़ी शाबाशी दी, बहुत अच्छा। तलवार लेकर के वापिस हो तो मुड़ गया और हाथ जोड़ा, बाबा पिंड छुड़ाया, इससे रवाना हो गया। सतत दुरात्मा सुरिदा निवेदितम वच सुधर्म्यम प्रतिगृह्य रावण गृहम जगामाथ ततश्च शौर्यमान पुनः सभांच प्रयौ सुरिद्रित। जाकर सभा में बैठ गया और कहा बुलाओ मंत्रियों को, सुपार्श्व को, सबको बुलाओ। वहां पर सबको बुलाया, सभा में बैठा, सुपार्श्व से कहा सुपार्श्व तुमने तो बड़ा अच्छा किया, विजय तो मेरी निश्चित है, मेरे पास मेरी शक्ति ऐसी है वो रावण के पास हो नहीं सकती है। अब तो बस साबा बड़ा अच्छा किया, सीता को आपने बचा दिया, अन्यथा सीता तो मेरे हाथ से आज मर जाती। अब आप सबके सब राक्षस लोग युद्ध करने के लिए चलो, आप सब लोगों का निशाना एक राम रहेगा, आप लोग मेरे साथ चलो, पैदल चलो और जो है दूसरे लोग चलो, हाथियों पर चलो, घोड़ों पर चलो, एक राम को मारने के लिए अपने सब आज उसी प्रकार से बाण बरसाएंगे जैसे बरसात के अंदर जो है बूंदे बरसती ही रहती हैं। आदमी कितना ही कुछ कर ले, बूंदों से वो बच नहीं सकता, इसी प्रकार से आज मेरे बाणों से वो बच नहीं सकेगा। और देखो आज रावण को हम मारेंगे, और रावण को नहीं, राम को हम मारेंगे। राम को मारने के बाद फिर देखना इन बंदरों की क्या दशा होती है, फिर देखना सीता की क्या दशा होती है, फिर एक एक की क्या दशा होती है, इसका पता चल जाएगा। ऐसा कहकर के सब राक्षसों को उसने युद्ध के लिए उत्साहित किया, चलो अपने युद्ध के लिए चलते हैं कि चलो। अब वे अपने हाथों में कई परिग ले लिए, घोटे ले लिए, शंख और शर ले लिए, तलवारें ले लिए, फरसे ले लिए, और कई कई शरीर का नाश करने वाले अपने अपने शस्त्र ले लिए और बंदरों की तरफ रवाना हुए मारने के लिए। बंदरों के पास में भी भाई वही पर्वत श्रृंग और वही जो है वृक्ष, ये सब लेकर के बंदरों ने उनके ऊपर, उन्होंने उनको बंदरों के ऊपर, ऐसे आपस में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। गदाओं के द्वारा पर्वतों को तोड़ा जाता था और पर्वतों के द्वारा गदाएं टूट 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 के गिर जाती थी, ऐसे तलवारों के द्वारा पर्वतों को यूं रोक लेते राक्षस। पर्वत आया और उसके ऊपर यूं आगे तलवार लगा दी, और कोई वृक्ष आया तो तलवार से काट दिया, फरसे से काट दिया, ऐसे आपस में लड़ते थे। तो भाई वहां रणभूमि के अंदर पहले तो शुरू शुरू में लड़ने लगे, तब तो खूब धूल उड़ी, लेकिन बाद में धूल उड़नी बंद हो गई। क्यों हो गई? शांतम शोणित विश्रवई, जब दोनों तरफ मरने लगे ना तो इतना खून वहां पर इकट्ठा हो गया कि वहां धूल उड़नी बंद हो गई। वैसे ही जैसे पहले खूब आंधी में मिट्टी उड़ती है, लेकिन बरसात होते ही फिर कितनी आंधी चलो धूल नहीं उड़ती, इसी प्रकार से धूल उड़ना वहां पर बंद हो गया। क्या बताएं, हाथी है, घोड़े हैं, ये तो हाथी है, रथ है, ये तो इस युद्ध रूपी नदी के किनारे थे, और ये बाण थे, ये मछलियां थी, और बड़े बड़े ध्वजाएं हैं, ये उस इस नदी के वृक्ष हैं, और जो है ये खून है, ये नदी का जल था, और शरीर थे, ये नदी में जाने के घाट थे, ऐसा ये यहां पर युद्ध के अंदर दृश्य दिखाई दिया। बानर भी और राक्षस भी सब खून से लथपथ हुए हुए थे, तो भी दोनों में बड़ा उत्साह था, एक दूसरे को पकड़ पकड़ के तोड़ तोड़ करके कोई फेंक देते थे, कोई शस्त्रों को फेंक देते थे। बेचारे बांदरों के केयों के सिर के यहां बाण लगा तो बसते बसते इतना इतना तो इतनी इतनी चमड़ी उनकी दूर हो गई, सिर एकदम उनका चमड़ी से रहित हो गया, जीवित है चमड़ी से रहित हो गया, घाव हो गया बहुत बड़ा। किसी के कान के पास से बाण गया, एक कान कट गया। किसी के नाक के पास से बाण गया तो नाक कट गया। किसी की छाती में लग गया, किसी के पैर में लग गया। इस प्रकार से बेचारे बांदर घायल होने लगे। और कई कई बंदरों ने राक्षसों के ऊपर बैठ करके और वही कान फाड़ना चालू किया, नाक खाना चालू किया और मुंह के ऊपर लबूरिया भरने लगे। यूं लबूरिया भर के यहाँ लटक और जाए, यूं पकड़ करके साहब ये नोच नोच करके उनको बदरूप करने लगे। इस प्रकार से जब राक्षस लोग बहुत ज्यादा बानरों पर आक्रमण करने लगे तब ये बानर लोग दौड़े दौड़े राम जी की शरण में चले गए। देखो इन बंदरों की एक बड़ी अच्छी बात थी, हारने लगते तो राम जी की शरण में चले। उनको मालूम है कि राम जी की शरण में जाने से हमको बचा भी लेंगे और शरण होते होते यदि हमको कोई मार भी देगा तो राम जी के शरण हो जाएंगे, ये हमारा बड़ा काम हो जाएगा। मरते समय में राम जी की शरण में तो आ ही गए ना, इसलिए वे राम जी की शरण में आ जाते हैं। और राम जी महाराज उस समय में बाण लेकर के और उन राक्षसों के सामने खड़े हो जाते हैं। अब भाई रावण आया और इधर राम जी महाराज थे। राम जी महाराज ने बड़ा अद्भुत पराक्रम दिखाया। राम जी किस समय में बाण उठाते हैं और कब बाण को फेंकते हैं और कितने कितने बाणों को फेंकते हैं इसको उसी प्रकार से नहीं जान पाए लोग जैसे हम लोग अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाते। देखो कितना हम लोग रात दिन व्यवहार करते हैं, कितनी कितनी बातें दिमाग से सोचते हैं, कितना कितना हमारा दिमाग लगता है, लेकिन इतना ही हम नहीं जान पाए कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारी आत्मा क्या है। जो सबसे ज्यादा निकट है उसी को ही सबसे पहले भूल गए और जिसके बिना ये संसार का ज्ञान नहीं होता बस वही हमारे लिए भुलावे में है। इंद्रियार्थेषु तिष्ठन्तम् भूतात्मानम् इव प्रजा, जैसे प्राणी आत्मानम् इव अपने आप को नहीं जानते ऐसे राम जी को वहां पर वे राक्षस लोग पहचान नहीं सकते। अरे वो देखो वो राम हाथी को मार रहा है। अरे नैनी कहा हाथी को मार रहा है, वो देखो रथ को तोड़ रहा है ना, वो है राम। अरे तुम दोनों झूठ बोलते हो, वो तो बेचारा वहां लड़ रहा है पैदल वाले सैनिकों के साथ लड़ता है। माने राम जी एक बाण इधर एक इधर एक उधर एक उधर जितना जल्दी जल्दी बाण लगाए ना उनको लगता है कि ये इधर राम ही लड़ रहा है, इधर भी राम ही लड़ रहा है, उधर राम ही लड़ रहा है। इतिते राक्षसा सर्वे, इस प्रकार से राक्षस लोग करने लगे। इधर राम जी ने भी देखा कि राक्षस लोग किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए, उनको पता ही नहीं चल रहा है। तो राम जी ने गांधर्वास्त्र छोड़ा। गांधर्वास्त्र से क्या होता है कि एक तरह से इनके दिमाग के अंदर एक मोह पैदा हो गया। मोह पैदा हुआ, राक्षस लोग जिधर भी देखें ये इधर राम है, चलो इनसे लड़ाई कर दो, राक्षस राक्षस ही लड़े आपस में। अब वो तो इसको राम समझे, वो इसको राम समझे, तो दोनों ही एक दूसरे को राम समझ रहे हैं। तो नते ददृशे रामम, वे राम को असल में देख ही नहीं सके क्योंकि मोहिता परमास्त्रेण गांधर्वेण महात्मना, महात्मा राम के द्वारा चलाया हुआ गांधर्वास्त्र सबको मोहित कर रहा था। तेतु राम सहस्राणी, हजार राम देखते हैं, हजार राम देखते हैं तो उनके दिमाग में आनी चाहिए कि राम तो एक है हजार कैसे हैं, पर दिमाग में तो आई नहीं बात। और वो बस आपस में एक दूसरे को राम समझते हैं। रणे पश्यन्ति राक्षसा, और वही क्या करते हैं पुनः एकमेव, फिर एक ही राम को देखते हैं, फिर कभी हजार को देखते हैं, कभी एक को देखते हैं। ऐसे उस गांधर्वास्त्र में सब मोहित हो गए। और भाई उस समय राम जी महाराज अपने धनुष को चारों तरफ से घुमाते घुमाते खूब जो है बाण बरसाते हैं तो राम उनके देखने में ही नहीं आते। राम जी का धनुष टंकार लोगों के कान के अंदर इतना बैठ गया कि एक बार का टंकार नाद पूरा नहीं हुआ जितने दूसरा हो गया। जैसे मंदिर में घंटा बजता है, एक आदमी बजाया टन तो दूसरे बजा दिया टन तीसरा, वो दिन भर बंद होता ही नहीं है। अब सुनते सुनते लोग एक ही ध्वनि को सुनते रहते हैं, अलग अलग लोग बजाते हैं पर एक ही ध्वनि को सुनते रहते हैं। इसी प्रकार से जाघोष तल निर्घोषम, धनुष का टंकार होता है, वो टंकार पर टंकार होता रहता था, उनको एक ही टंकार सुनाई देता है। फिर जो है भाई ददृशु राम चक्रम तत् काल चक्र में वह प्रजा। अब राम जी महाराज क्या करें कि चक्र चक्र के अंदर राम युद्ध करने लगे, शरीर को भी घुमाने लगे, शरीर को घुमाते घुमाते यूं शरीर को घुमा रहे हैं, माने हाथ घुमाना नहीं है, यूं शरीर को घुमाते घुमाते यूं लड़ते हैं। तो राम को एक चक्राकार में उन्होंने देखा। अब भाई देखो बताया जाता है वो राम जी कितना करते थे, वो दिन का आठवां भाग, दिन के आठवें भाग में, दिन का आठवां भाग कितना होता है, 12 घंटे का एक दिन है, 12 घंटे का आठवां भाग तो 1.5 घंटा हुआ। 1.5 घंटे में राम जी के द्वारा कितनी लड़ाई होती थी वो जरा सुन लीजिए, कितनी होती थी कि 10,000 रथ मारे जाते थे, 10,000 रथ तोड़ते थे और 18,000 हाथियों को मारते थे और 14,000 अश्वारोहियों को मारते थे, मतलब घोड़े पर चढ़े हुए को, और 2,000